ओम शांति। तो आज ये हमारी कॉन्फ्रेंस का लास्ट सेशन है, राजयोग अभ्यास का आखिरी सत्र। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आज जो सत्र में हम बात करने वाले हैं, कर्मों की गुहे गति पर। गुहे मीन्स डीप, गहरी। कर्मों की गति हम सब जानते हैं, पर परमात्मा हमें गहरी गति समझाते हैं। बचपन से ही कर्मों की गति के बारे में हमें सिखाया जाता है, और अधिकांश ही हमारे मुख से कर्मों को लेकर के वाक्य निकलते रहते हैं। क्या क्या कहते हैं हम? जो करोगे वो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। बोलते हैं ना हम सभी यही, ये वाक्य कितनी बार रिपीट करते हैं कर्मों के लिए रिलेटेड। और कर्मों का ज्ञान भी हमें कहीं ना कहीं पता है, अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है। लेकिन उसकी गहरी गति क्या है, डीप फिलॉसफी क्या है, कर्मा के लॉज क्या हैं? अब जब लॉ की बात करते हैं, तो अगर लॉ जो बनाया गया है उसको हम फॉलो नहीं करते तो उसकी पनिशमेंट होती है, होती है। जैसे ट्रैफिक लाइट पर लॉ है कि आपको रेड लाइट पर रुकना है, लॉ बना है ना, और अगर आपने ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर लिया तो पुलिस वाला आकर पकड़ेगा। और मैं कहूं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ट्रैफिक लाइट पर रुकना होता है, तो पुलिस वाला क्या कहेगा? वो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपको मालूम नहीं था, लेकिन आपने लॉ ब्रेक किया है। तो कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑल्सो पनिशेबल। मुझे लॉ नहीं मालूम तो भी पनिशमेंट अवश्य मिलेगी। तो अगर कर्म में कर रही हूं और मुझे उसका ज्ञान ही नहीं है कि ये वास्तव में कौन सा कर्म है, तो पनिशमेंट तो फिर भी मिलेगी। तो जब हम कर्मों की गुहे गति पर बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कर्म क्या है। आजकल सभी कहते हैं, किसी से पूछो आप किसको मानते हो, तो कहते हैं हम तो कर्म में ही विश्वास करते हैं, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो कर्म क्या है? हर एक काम जो मैं इस कर्मेंद्री से कर रही हूं वो कर्म है। देखना, सुनना, बोलना, श्वास लेना भी एक कर्म है। कोई व्यक्ति कहे मैं कर्म का संन्यास कर लूं, इस दुनिया का संन्यास कर लूं, दुनिया में संन्यास ले सकते हैं लेकिन कर्म का संन्यास कोई नहीं ले सकता। खाएगा तो सही, वो भी तो एक कर्म है। श्वास तो लेंगे, वो भी तो एक कर्म है। अब कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म किस भाव से किया गया उसके अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है और उसी के अनुसार उसका परिणाम भी बदल जाता है। जैसे कि देखना एक कर्म है, लेकिन देखने में भी अंतर है, किस भाव से देख रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि होती है, मां की दृष्टि होती है, वो किस भाव से देखती है? गुरु किस भाव से देखते हैं? कहते हैं गुरु की नजर तो निहाल कर देती है। मां किस भाव से देखती है? और वही किसी की कुदृष्टि हो, अवगुणी दृष्टि हो, तो नजर किस तरह की मैंने रखी उसी अनुसार उसका स्वरूप भी बदल गया और परिणाम भी बदल गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, कोई कर्म करने को मिला, एक व्यक्ति ने तो बड़े दिल लगा के कर्म किया, समझो इस हॉल की सफाई करने का एक सेवा मिली, किसी ने तो बहुत दिल लगा कर करी, किसी ने मजबूरी से करी, तो उस भाव से कर्म का फल बदल जाता है, परिणाम बदल जाता है। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य तो जो कर्मों की डेफिनेशन दी जाती है उसमें चार प्रकार के कर्म बताए जाते हैं। पहला है पाप कर्म, कोई भी विकार के वश किया हुआ कर्म पाप कर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोभ के वश या अभिमान के वश मैं कोई कर्म कर रही हूं। अब लोभ के वश कैसा कर्म होगा, दूसरे के साथ बेईमानी करेंगे, स्वार्थ होगा, अपना बस यही मैपन की भावना होगी, तो ऐसा कर्म पाप कर्म की श्रेणी में रखा जाता है जो किसी भी विकार के वशीभूत हो। अब इसी में गहरा चले जाए तो परमात्मा ने कहा बॉडी कॉन्शियस में, माना खुद को शरीर समझते हुए हम जो कर्म करते हैं वो पाप कर्म की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि शरीर के भान में माना अभिमान के साथ वो कर्म कर रहे हैं तो वो पाप कर्म की श्रेणी में ही गिना जाता है। दूसरा कैटेगरी है पुण्य कर्म, कोई अच्छा दान पुण्य करते हैं, है ना, मंदिरों में इधर उधर सब करते हैं तो वो पुण्य कर्म। लेकिन अगर उस कर्म में भी स्वार्थ है, जैसे आप लोग देखते हैं आजकल मंदिरों में या अच्छी अच्छी जगहों पर दान करते हैं, साथ में तख्ती लटका देते हैं कि ये फला व्यक्ति ने फला डेट को इसकी याद में इतना इतना दान किया, तो कर्म का फल उसी वक्त हो गया पूरा। तो अच्छे कर्म करना पुण्य कर्म। तीसरे प्रकार के कर्म है सत्कर्म, जो कर्म परमात्मा की याद में किए जाएं वो सत्कर्म की डेफिनेशन में आते हैं। और लास्ट है अकर्म। अकर्म अर्थात अकर्म, कर्म तो कर रहे हैं, अकर्म का अर्थ ये नहीं कि कर्म नहीं करना। अकर्म अर्थात क्या, ना वो पॉजिटिव की श्रेणी में है वो, ना नेगेटिव की श्रेणी में है। ऐसे कर्म सतयुग में होते हैं जहां पर ना विकार है और ना ही परमात्मा की याद है, क्योंकि सतयुग में तो हम पूरी संपूर्ण अवस्था में होते हैं। तो ये चार कैटेगरीज ऑफ कर्मा है। अब जो सी कर्म हम कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। कुछ कर्मों का फल तो इंस्टेंट मिल जाता है और कुछ का कर्म संचित हो जाता है। कुछ कर्मों का फल इंस्टेंट मिलता है और कुछ का संचित हो जाता है। जैसे कि अभी आप किसी व्यक्ति से, किसी बहन से या भाई से मिले, आपने एकदम स्माइल किया उनको देखकर, तो सामने से भी क्या रिस्पॉन्स आया, स्माइल का रिस्पॉन्स आया। या आपने किसी को एकदम गुस्से की दृष्टि से देखा, तो सामने से भी कैसा आता है रिस्पॉन्स? सेम रिस्पॉन्स आता ना, तो इंस्टिंक्ट रिजल्ट मिल गया। या कुछ बाजार का ऐसा खाया और तबीयत खराब हो गई, तो ये नहीं कहेंगे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिला है। नहीं, आप रात को कुछ खाकर आए हो। किसी को डायबिटीज हो जाती है या कोई ऐसा बीमारी हो जाती, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, और सारा जीवन जो खाया वो है ना, तो वो पूर्व जन्मों का फल नहीं है, वो तो अभी के किए हुए कर्म का फल है। तो ये इंस्टेंट फल वाले कर्म हैं, और कुछ कर्मों का फल संचित होता है। पहले का कर्म किया था लेकिन फल आज मिल रहा है, इसलिए समझ में ही नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। एक प्रश्न हम सभी आपस में भी पूछते, भगवान से भी पूछते, कौन सा प्रश्न? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? Why me? मैंने तो किसी के साथ, जब से मुझे याद है बचपन से, मैंने तो किसी के साथ कोई बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? और जो बुरा कर रहा है ना, उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, और हम जो ईमानदारी से चल रहे हैं ना, हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। तो भगवान बहुत अनफेयर है, ऐसा है? ऐसा है? परमात्मा कहते कि मैं तो कर्मों की फिलॉसफी में या कर्मों के विधान में इंटरफेयर ही नहीं करता हूं। पिता है ना, कैसे हमें बुरा फल देंगे? आप सभी भी अधिकांश गृहस्थ वाले बैठे हैं, माता पिता हैं, अधिकांश को दो बच्चे होते हैं। अभी दो बच्चे हैं, आप सोचेंगे एक बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा बंगला, गाड़ी, पैसा, सुख सुविधा, हेल्थ वेल्थ सब कुछ दे दें, और दूसरे बच्चे को एकदम रोड पर भीख मांगता हुआ छोड़ दें, क्या कहेंगे? दो बच्चे हैं आपके, तो दोनों के लिए अच्छा सोचेंगे या एक के लिए बहुत अच्छा और एक के लिए बहुत बुरा? दोनों के लिए अच्छा सोचेंगे, बेस्ट सोचेंगे, बराबर का सोचेंगे? तो परमात्मा जो सर्व आत्माओं का पिता है, वो हमारे लिए बुरा कैसे सोचेंगे? सोच सकते हैं क्या? इतनी ऊंची अथॉरिटी, एक को बंगले में रख दिया, गाड़ी पैसा सुख सुविधा सब कुछ दे दिया, और दूसरे को रोड पे, एक को गोरा बना दिया, दूसरे को काला बना दिया, एक को सुंदर बना दिया, दूसरे को कुरूप बना दिया। ये परमात्मा का कार्य है? नहीं। कर्म का सिद्धांत कहता है जो करोगे वो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो हमारे ही किए कर्मों का फल हमारे सामने आता है। समझो आज कोई बहुत बुरा कर रहा है, वो पास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा करके अवश्य आया है, जिसका फल आज उसको मिल रहा है। लेकिन आज जो वो कर रहा है, उसका फल भविष्य में वो अवश्य पाने वाला है। आज मैं अच्छे कर्म कर रही हूं, फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, जरूर पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कर्म मेरे द्वारा हुआ है जिसके कारण से आज अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन आज जो मैं कर्म कर रही हूं, कल भविष्य में मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो कर्म का सिद्धांत कहता है जो बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। आम का बीज है तो आम का फल ही मिलेगा, बबूल का बीज है तो बबूल का फल ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आम के बीज से बबूल निकल आए या सेब निकल आए या कुछ और निकल आए। कोई कोई का फल एकदम इंस्टेंट मिलता है और कोई एकदम कुछ समय के बाद मिलता है। उसमें अगर मैंने शरीर छोड़ दिया तो आत्मा तो सेम ही है ना, अगले बर्थ में जाएगी तो भी फल चुकतू करना पड़ेगा। इस बात को हम बहुत सहज रीति से समझते हैं। ये गुड़िया हमारे पास सामने फर्स्ट रो में बैठी है, समझो आज इनको कोई 500 रुपीस की आवश्यकता पड़ गई, लाए थे पैसे खर्च हो गए, तो इन्होंने कहा दीदी मुझे बहुत अर्जेंट नीड है, आप प्लीज मुझे 500 रुपीस दे दीजिए और मैं आपको घर जाते ही पेटीएम कर दूंगी। और मैं भी काफी टाइम से देख रही हूं, बहुत अच्छी बच्ची है और ऐसा कर्म नहीं करेगी कि मेरे पैसे लेके चली जाए, तो ठीक है मैंने भी 500 रुपीस दे दिए। अभी वो घर जाते ही बाई चांस भूल गई, माइंड से स्किप हो गया, बिजी हो गए, कारोबार में चले गए, तो क्या वो 500 का हिसाब चुकतू करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। समझो इस बर्थ में हम फिर से मिले ही नहीं, तो नेक्स्ट बर्थ तक भी वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि आत्मा सेम है ना। समझो आज आप ये ड्रेस पहन के बैठे हैं, कल भाई जी ने रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहन लिया या भाई जी ने कोई और कलर का कॉस्ट्यूम पहन लिया, ड्रेस जिससे अभी हम व्हाइट में हैं, कोई और कपड़े पहनकर आ गए, तो अगर पैसा उधार लिया हुआ था तो कोई बोले कि मैंने इतना पैसा उधार लिया था, तो वो कहेंगे अरे मैंने तो वो व्हाइट ड्रेस वाले से लिया था, आज तो आप दूसरी ड्रेस में हो, तो वो कहेंगे भाई साहब आपने मुझसे पैसा उधार लिया था, मेरे कपड़ों से नहीं लिया था। तो शरीर भी क्या है, शरीर भी एक वस्त्र ही तो है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेगी, तो कर्म तो आत्मा के साथ जुड़े हैं ना। दुनिया में एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बिलीफ सिस्टम है कि आत्मा पे कभी लेप छेप नहीं चढ़ता, आत्मा तो शुद्ध है, निर्लेप है, लेकिन परमात्मा ने ये बात क्लियर करी कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा पर ही सारा लेप छेप चढ़ रहा है। जो कर्म शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर रहे हैं ना, वो कर्म के लिए जिम्मेवार आत्मा है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गलती ड्राइवर की मानेंगे या गाड़ी की मानेंगे? ड्राइवर की, गाड़ी की नहीं। कौन कहते हैं गाड़ी की गलती है? कोई है कहते जो गाड़ी की गलती है? गाड़ी भी तो गलत हो सकती है, गाड़ी निर्जीव है। किसी की कोई और ओपिनियन है, गलती गाड़ी की या ड्राइवर की? तो वो भी तो जिम्मेवारी ड्राइवर की थी कि वो टाइम पे मेंटेनेंस करे, गाड़ी खुद तो नहीं बताएगी है ना, गाड़ी तो नहीं बोलेगी कि मेरा टायर फटने वाला है प्लीज चेंज, या गाड़ी में कोई डिफेक्ट आ रहा है उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है? ड्राइवर जिम्मेवार है ना, गाड़ी किसकी है? ड्राइवर की है। तो एक्सीडेंट होंगे तो हम कहेंगे ड्राइवर एफिशिएंट नहीं था, वो चाहता तो टाइम पे कंट्रोल कर देता, ब्रेक फेल हो गया तो उसको टाइम पे उसकी सर्विसिंग करवानी चाहिए थी। ऐसे ही आज हम अनायास ही बोल देते हैं, मेरी इंटेंशन नहीं थी, बोलता है ना, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरे मुख से निकल गया, ऐसे ही निकल गया, बहुत समय से यहां पर था, ऐसे नहीं निकलता। तो गलती किसकी? ड्राइवर की, जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, या कोई कर्म हो गया। आप अभी पीछे एक सर्वे हुआ था जहां पर जेल के कैदियों से पूछा गया कि आपने ऐसा कर्म क्यों किया, जैसे कोई कत्ल कर दिया या डाका डाल दिया, तो कहा उस एक क्षण में मुझे इतना क्रोध आ गया कि मेरे द्वारा वो कर्म हो गया। आज मैं पछता रहा हूं, काश वो एक सेकंड का कंट्रोल। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, कर्म कर लेते हैं फिर पछताते हैं, काश वो सेकंड में ना बोला होता तो आज रिश्ते अच्छे होते। होता ना हमारे साथ ऐसा? कंट्रोल ही तो है, ये फोन हमारे हाथ में है सारा दिन, इसमें क्या देख रहे हैं, कितना कंटेंट हम अपने अंदर। और रोज रात को हम सभी सोचते हैं कल से पक्का इतना देर ये काम नहीं करेंगे, और फिर अगले दिन 5 मिनट देखते हैं, और फिर वो टक 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 करते करते कितना टाइम बीत जाता है। आप सभी अनुभवी हो ना? तो सेल्फ कंट्रोल आत्मा की जिम्मेवारी है। जो कर्म मेरे द्वारा हो रहा है उसके फल की जिम्मेवार मैं आत्मा खुद हूं। कर्म का बीज संकल्प है, संकल्प द्वारा ही इसकी शुरुआत होती है। हम 2-3 दिन से राजयोग अभ्यास के सत्र में हम ये पढ़ ही रहे हैं, पहले मन में संकल्प आता है, बुद्धि विजुलाइज करती है, उसके अनुसार निर्णय लेती है कि करूं या ना करूं, और वो कर्म करती है, और करते 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 वो हमारे संस्कार या हमारी हैबिट्स बन जाते हैं, और वही संस्कारों को करते हुए हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के साथ ही भाग्य जुड़ा हुआ है, माना कर्म का रिजल्ट। किस्मत कहते हैं ना, किस्मत क्या होती है, किस्मत क्या होती है, हाँ बहुत एक्यूरेट बताया, किस्मत, दो अक्षर, किस्मत, किसकी मत पे कर्म हो रहा है वो हमारी किस्मत बनाती है। अगर मनमत पर, मन अपने मन के अनुसार, या परमत पर, या माया या विकारों की मत पर कर्म कर रहे हैं तो किस्मत, और अगर परमात्मा की मत, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, उसकी मत पर कर्म करते हैं तो वही मत हमारी जीवन को बहुत सुंदर बना देती है। देखिए हम सभी कर्मों के अनुसार ही चल रहे हैं, सारा जीवन ही उस पर निर्धारित है ना। अभी कर्म के बंधन बन गया है। जब हम सतयुग में थे ना तो हम कर्म संबंध में थे, अभी हम कर्म बंधन बन गया है। हर कर्म भारी कर देता है। आप सभी के घरों में, अधिकांश के घरों में मेड्स होंगी, काम मेड ने करना है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना या जो भी काम मेड ने करना है। आप सारा दिन क्या गाते हो? मेड आएगी काम कराना है, मेड आएगी उससे काम कराना है, करना उसने है, लेकिन बोझ हमने पकड़ा हुआ है, बोझ पकड़ा हुआ है यहां पर। नाश्ते अभी किया भी नहीं होता, पहले लंच का सोचने लगते हैं, लंच अभी किया भी नहीं है पहले डिनर का सोचने लगते हैं, फिर डिनर में पहले सुबह का। प्लानिंग करना अलग बात है, लेकिन कर्म को बोझ की तरह पकड़ना वो क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे अंदर अभी बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस, हम सभी के अंदर अभी वो है। तो कर्म बंधन बना, सत्युग में कर्म संबंध था। कैसे संबंध से बंधन में आए? मैं करते आए। जितना मैंपन है कर्म में उतना वो बंधन है, और जितना समर्पण भाव है, प्रभु करावन हार आप हो, मैं आत्मा करण हार हूं, उतना ही हम लाइट हो जाते हैं कर्म में, और उतना ही वो कर्म एक्यूरेट होता है। आप यहां इस ज्ञान सरोवर परिसर में कितने दिन से हैं? हाँ, 3-4 दिन तो सभी को हो गए। आप यहां देख रहे हो हर तरफ सब कुछ नीट एंड क्लीन है, एक्यूरेट है। चाहे आप डाइनिंग में जाओ, चाहे आप परिसर में घूमो, कहीं कोई कूड़ा नहीं, कोई गंदगी नहीं, जबकि इतनी बारिश भी हो रही है। कोई भी आपको यहाँ पर कैंपस में भाई या बहन जितने रह रहे हैं, निवासियों को आप देखते हैं, कोई भी आपको ऐसा दिखा दुखी परेशान है? इतना काम, इतने लोग आए खाना बनाना, कोई ऐसा दिखा? सबके चेहरे कैसे दिखते हैं? हाँ, खिले हुए स्माइलिंग फेसेस हैं, खुश हैं सारे। घर में 2 मेहमान आ जाए कैसा हो जाता है? अरे अभी नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, लंच भी है, इतना काम है ना? क्योंकि हम बंधन समझ लेते हैं उसको, मैंने करना है। फर्क है समर्पण भाव का, कार्य उसका है, हमारा नहीं है। तो ये है कर्म का ज्ञान। अब कर्म के अनुसार ही परिणाम मिलता है। तो एक और मिथ जिसको भी हम आगे क्लियर करने वाले हैं, वो है 84 लाख योनियों का, जो कर्मा फिलोसफी से ही जुड़ा हुआ है। कहते हैं दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरती है, और बड़े ही पुण्य कर्म करने के बाद हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है। पहले हम मगरमच्छ, कॉकरोच सब बनाए हैं, और अभी पुण्य कर्म करने के बाद ये मनुष्य की योनि मिली है। ऐसा किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करेंगे एक बारी, ऑनेस्ट आंसर दीजिए, क्योंकि अभी हम क्लैरिटी करने वाले हैं। थैंक यू। हम भी पहले ऐसा ही समझते थे, क्योंकि गरुड़ पुराण और ऐसे ऐसे जो हमारे ग्रंथ है उसमें ऐसे ही बताया गया है कि बहुत बुरी दुर्गति होती है मृत्यु के बाद। लेकिन परमात्मा ने स्पष्ट किया कि कर्म का फल भुगतने के लिए 84 लाख योनियां लेने की आवश्यकता नहीं है, इतनी योनियों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। हर एक योनि में जो भी जीव है, हर एक योनि सुंदर परफेक्ट है क्या? हम लोग तो फिर भी बहुत बेटर ऑफ हैं। जो बेचारे जन्मते ही अपंग या हैंडीकैप होते हैं, या जन्मते ही माता पिता नहीं रहे, जन्मते ही रोड पर है, हाँ, तो उन्होंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे फिर कहते कर्म का फल मिला है? तो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, है ना? अच्छे कर्म करके मनुष्य योनि मिली, फिर किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कहते कर्म का फल मिला है। अभी कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, कौटिल्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गूगल बॉय है, या कोई बहुत अच्छे ग्रंथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, संस्कृत के श्लोक सुना देते हैं, तो हम कहते हैं ये पिछले जन्म से सब कुछ सीख कर आया है। तो कौन सा जानवर किताबें पढ़ता है ना? एक ही योनि है ना मनुष्य की। अगर इतनी योनियां हैं और एक ही मनुष्य की योनि है, तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? जानवरों की। अभी तो कई प्रजातियां लुप्त ही हो गई हैं, मनुष्य ही मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन में लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें हिप्नोटाइज करके पिछले जन्म में ले जाते हैं। उसमें किसी ने भी आज तक ये नहीं देखा कि वो कोई जानवर था, सबने अपने आप को मनुष्य के रूप में ही देखा। भारत में भी कई बार अखबारों में आप लोग पढ़ते हैं, किसी किसी को अपना पुराना जन्म याद आ गया, वो फलाने गांव में ले गया, अपनी पत्नी को पहचान लिया, अपने बच्चों को पहचान लिया, तो मनुष्य के रूप में ही देखा है। तो मनुष्य योनि में जो मनुष्य है, मनुष्य जो है वो अपनी योनि में ही रहता है। बीज तो बदल नहीं सकता ना, आम का बीज है उससे आम ही निकलेगा ना। एक वर्ष आम निकले, एक वर्ष सेब निकले, ऐसा हो सकता है? तो बीज नहीं बदल सकता। फिर फल कैसे मिलेगा? तो अपनी योनि में सब फल भुगतते हैं। देखिए, एक मनुष्य भी गाड़ियों में घूम रहा है तो एक जानवर भी गाड़ियों में, आपने देखा ना आजकल पेट्स रखते हैं, उनका ध्यान मनुष्यों से भी ज्यादा रखते हैं, फ्लाइट में भी ले जाते हैं अपने साथ, अपने साथ नरम बिस्तरे पे सुलाते हैं। तो कुछ तो कर्म किया होगा ना उस जानवर ने, जो इतना अच्छा उसको फल प्राप्त मिला है। एक मनुष्य भी गाड़ियों में घूम रहा है तो एक पशु भी घूम रहा है। एक मनुष्य रोड पर बैठा है रोटी टुकड़ के लिए भटक रहा है और एक पशु भी भटक रहा है। एक इंसान भी जेल में बंद है तो एक पशु भी जू में बंद है। एक पशु भी बोझ ढो रहा है, गधे के ऊपर कितना बोझ रखते हैं, ढोता है वो बोझ। हॉर्स राइडिंग अभी माउंट में आप लोग देख रहे हो, मनुष्य का बोझ उठा रहे हैं ना, और ऐसे ही एक मनुष्य भी बोझ ढोता है। एक पशु भी बोझ ढो रहा है, एक मनुष्य भी बोझ ढो रहा है। तो अपनी ही योनि में अपने ही कर्म के अनुसार फल मिल रहा है, उसके लिए योनि परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा गया? क्यों लिखा गया? गलत तो नहीं है वो भी, उसके पीछे का भावार्थ हम नहीं समझे। एक्चुअली ये जो शास्त्र बने हैं ना, ये सभी द्वापर में बने हैं, और द्वापर के मनुष्य युगों की आपको ज्ञान होगा ना, चार युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो द्वापर युग में शास्त्र लिखे जाते हैं, और जब ये शास्त्र लिखे जाते हैं द्वापर युग में, तो वो जो लिखने वाले थे ना, वो बहुत विद्वान थे, फोर साइटेड थे, माना दूरांदेशी थे। उनको मालूम था कलयुग का मनुष्य किसी से डरेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने ये शास्त्रों में लिख दिया, अपने कर्मों पर ध्यान दो, नहीं तो इतनी योनियों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन कलयुग का मनुष्य जब ये शास्त्र पढ़ा, तो कलयुग का मनुष्य तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने क्या किया? कलयुग के मनुष्य ने क्या बोला जब ये शास्त्र पढ़े? अगला जन्म किसने देखा है? जो करना है अभी कर लो, एक ही लाइफ है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। कहते हैं ना, एक ही लाइफ है, सब कुछ कर लो, और फिर जब अगले जन्म में उसका फल मिलता है तो क्या कहते हैं? वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कर्म का सिद्धांत सिखाता है कि अपने हर एक कर्म पर अटेंशन दो, हर एक कर्म सोच समझ कर करो। हमारा ब्रह्मा कुमारी ने एक स्लोगन है, पहले सोचो फिर तोलो फिर करो, और आदि मध्य अंत तीनों कालों को सोच के करो। लेकिन हम सबका अनुभव होगा, ज्ञान हम सबको है कि कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा बुरा है। करना भी हम सब अच्छा कर्म ही चाहते हैं, ऐसा ही है ना, अच्छा कर्म ही करना चाहते हैं। लेकिन लेकिन क्या, जब सिचुएशन आती है तो हमारा कर्म जो हमें करना चाहिए था वो नहीं हो पाता, ऐसा किस किस का एक्सपीरियंस है? समझ में आई मेरी बात, रिपीट करूं? समझ में आई? मैं करना तो अच्छा कर्म चाहती हूं, सपोज एग्जांपल देती हूं, मुझे पता गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है क्या गुड़िया? अच्छा होता गुस्सा करना, करना चाहिए नहीं ना, फिर भी करते हैं, अच्छी बात नहीं है फिर भी हम सब करते हैं। तो जब अच्छा नहीं है और फिर भी करते हैं, दोनों में गैप कहाँ है? मुझे पता ही नहीं करना और फिर भी मैं कर रही हूं, और फिर भी मैं रिग्रेट कर रही हूं, और फिर भी मैं कर रही हूं, यही तो हम जूझ रहे हैं ना सारा दिन। कहां पर गैप है? सोच में, समझ और आचरण में क्या गैप है? अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? थोड़ा सा तेज बोलिए। सिचुएशन के कारण से। सिचुएशन तो कभी भी कुछ भी हो सकती है, अभी तो कलयुग के और अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो सेकंड में कुछ भी हो सकता है। अभी फ्लाइट उड़ी, अभी हम सबने देखा ना, सेकंड्स में सिचुएशन तो कभी भी आएगी। सिचुएशन पे जी जी मैं समझ गई। तो इसके ऊपर हम अभी चर्चा करते, बहुत अच्छा, थैंक यू, आप बैठिए। तो ये एक सिचुएशन आई इनके सामने कि इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था या जो करना चाहिए था वो समय पर नहीं हुआ। देखिए, हम अपने मन में एक अवधारणा बना लेते हैं कि ये फला फला व्यक्ति ऐसा ही मेरे अकॉर्डिंग करेगा। जैसे मैंने बोला ना, एक्सपेक्टेशंस, ये टॉपिक से थोड़ा हटकर है लेकिन प्रश्न आया है तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। एक्सपेक्टेशंस, हम दुनिया में जितना भी दुख उठा रहे हैं उसका कारण क्या है? कारण एक्सपेक्टेशंस ही हैं, चाहे घर वालों से हो, चाहे बाहर वालों से हो, या किसी से भी हो, एक्सपेक्टेशंस ही तो हैं। अब मैंने एक्सपेक्ट किया ना, चलो छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। घर में आप सारा दिन काम करते हो, है ना, हाउसवाइफ कितने बैठे हैं यहाँ पर? मैक्सिमम मेजॉरिटी है। सुबह से लेकर के बच्चों को उठाने से लेकर के खाना बनाना, ऑफिस भेजना हस्बैंड को, फिर कई कई खुद भी वर्किंग है, खुद भी जाना, सारा दिन लगे रहना। रात को क्या एक्सपेक्ट होता है? कि कोई प्यार से दो शब्द एप्रिसिएशन के ही बोल दे, ये एक्सपेक्टेशन है ना। और सामने वाला आकर के बल्कि और ही बोल देता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन, है ना, जो हाउसवाइफ है, तुमने किया क्या सारा दिन, तुम तो वेली हो, ऐसे भी बोलते थे ना। ये बहुत एक जेनरिक शब्द है, वेले तो बैठे रहते हो सारा दिन, टीवी देखते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, तो अंदर में क्या एक्सपेक्ट किया था? एप्रिसिएशन। और मिला क्या? और ही हमारा मोटिवेशन डाउन कर दिया। तो वो एक्सपेक्टेशन से क्या उठाते हैं हम? दुख उठाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, है ना। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये फला फला व्यक्ति, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी सास या बीके बहने ऐसे रिस्पॉन्स करेंगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। हर एक यहां पर ह्यूमन बीइंग है, हर एक अपने ऊपर काम कर रहा है। गुरु एक है, निराकार परमपिता परमात्मा, वो एक है। हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है उस एक को फॉलो करना है, बाकी हम सब सीख रहे हैं, सब उस प्रोसेस में है, सब उस जर्नी में है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया अपने हस्बैंड से, आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि वो अप्रिशिएट करें। हो सकता है, ये मेरी साइड है ना, एक्सपेक्टेशन वाली साइड मेरी है, हो सकता है उनके ऑफिस में आज कुछ अच्छा ना हुआ हो, उनके बॉस से उनको डांट पड़ी हो, या किसी पॉलिटिक्स में, आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होता है, किसी पॉलिटिक्स में उनको फंसा दिया हो, और मैंने जब घर आकर कुछ कहा, क्योंकि वो मुझसे हक रखते हैं, तो उन्होंने सारा गुस्सा मेरे पे उतार दिया। तो मैं सामने वाले की सिचुएशन नहीं जानती, पर अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण से मैंने दुख उठा लिया। अब मुझे नहीं पता ना उस बीके बहन की सिचुएशन भी क्या होगी, या उस समय। मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ, आपके साथ मेरी सहानुभूति भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ भी वॉमिटिंग वाली सिचुएशन हो। चलो एक बार को समझ गया कि वो व्यक्ति उस समय उस थॉट में नहीं था, लेकिन दुख मैंने उस व्यक्ति के कारण नहीं उठाया, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन से उठाया है। मानते हैं इस बात को? एक्सपेक्ट सिर्फ सुप्रीम से कीजिए। परमात्मा ने ये सिखाया है, देखो इस समय इस कलयुग में सब मनुष्य हैं और सब खाली हैं, और भरने का स्रोत एक वही है, सब उससे भर रहे हैं, सब अपनी चार्जिंग कर रहे हैं, है ना, सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि बच्चे मुझे देखो, मुझसे लो, और तुम्हारा स्पेशल रोल है कि तुम औरों को भी दो, खालियों से एक्सपेक्ट नहीं करो, किसी से भी नहीं करो, क्योंकि परमात्मा स्रोत है। बाकी बीके बहनों की जो बात है, आपने कहा कि हाँ हमें उनके प्रति इमेज है, मैं एक बात बताना, शेयर करना चाहूंगी। मैं काफी छोटी थी और बहुत छोटेपन से संस्था से जुड़ी हूँ, तो तभी तो मेरे लिए भी स्कूल जाती थी ऐसे छोटे पन में, और बीके बहनों के लिए हमारे मन में भी बहुत ऊंची इमेज थी। तो एक बार इस सेंटर पर मैंने किसी को थोड़ा सा गुस्सा करते हुए देखा, तो मैंने घर आकर के दादी को बोला कि दादी ये बहन तो ब्रह्मा कुमारी टीचर बहन है, ये कैसे गुस्सा कर रही है। और मेरी दादी बहुत समय से ज्ञान में थे, 1965 से वो ज्ञान में थे, लौकिक दादी। तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है ना, ये कैसे गुस्सा कर रही है। तो दादी ने मेरी एक सीख दी उस दिन में, एक सीख दी जो मैंने आज तक, भले मैं इस स्ट्रेस में आज हूं, मैं इस साइड पर हूं, पहले मैं उस साइड पर थी, आज मैं इस साइड पर हूं, तो भी वो सीख मैंने पकड़ के रखी है। मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि देखो हम तो घर में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने नोन वालों के साथ रहते हैं, लेकिन वो बीके बहने हैं तो वो भी कलयुग से ही आए हैं ना, सतयुग से तो नहीं आए हम लोग भी, है ना, लेकिन फिर भी हिम्मत रखी समाज के लिए, विश्व कल्याण के लिए, अपना सर्वस्व समर्पण किया, निस्वार्थ भाव से सेवाएं कर रही हैं। परमात्मा निदारी ने सिखाया, कहा देखो वो जहां रहती हैं कोई उनका कंफर्ट जोन नहीं होता, आसपास रहने वाले लोग कोई उनके नोन नहीं होते, फिर भी वो अपना 100% देती हैं। अगर उनमें कोई कमी है भी ना, ये मेरी दादी के शब्द थे कि अगर कोई कमी है भी ना तो वो परमात्मा माफ कर देगा, क्योंकि उसने अपनी हिम्मत का कदम तो बढ़ाया है। और अगर मैं कमी देखूंगी तो कमी मेरे में आ जाएगी। तो ये दादी की सीख मुझे याद रहती है कि कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत तो रखी, लेकिन काम तो वो भी अपने पे कर रहे हैं। अभी आपके 7 डेज कोर्स के बाद हमारी जो एडवांस कोर्स की क्लास होती है, मुरली क्लास होती है, उस मुरली क्लास में हम सबके लिए सेम होती है। ऐसे नहीं है ब्रह्मा कुमारी दीदियों के लिए अलग से मुरली आती है और भाई बहनों के लिए अलग से मुरली आती है, नहीं। 50 साल वाला, 60 साल वाला, 40 साल वाला, सबके लिए परमात्मा के महावाक्य एक हैं। और परमात्मा कहते काम करो, वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। तो उनको देख के हम जजमेंट ना बनाएं। कई बार कोई सिचुएशन मेरे सामने आती है तो कोई ना कोई सीख मुझे सिखाने के लिए आती है, वो सामने वाले की कमी नहीं, शायद वो मेरा पेशेंस बढ़ाने के लिए आ रही है, शायद वो मुझे और धैर्यता सिखाने के लिए आ रही है। समझ रहे हैं आप? तो एक्सपेक्टेशंस, और फिर इससे मुक्त कैसे होना है? क्योंकि अभी आपके मन में ये बहुत चल रहा है, तो इससे मुक्त कैसे होंगे? अभी सिचुएशन तो हो गई, रिजल्ट भी हो गया, अब मुक्त कैसे होना? परमात्मा के सामने बैठे, जिसके प्रति वो चल रहा है, मन ही मन उसे माफ करें, माफी मांगे। क्योंकि यहां पर एक कर्म का सिद्धांत और मैं आपको समझाना चाहूंगी, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन ये निकला है, इससे कर्म का सिद्धांत बताना चाहूंगी। मैंने उनके साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलत किया, कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में मैंने उनके साथ किया होगा। शायद बस में आपने लास्ट टाइम सीट नहीं दी थी, लास्ट बर्थ में तभी नहीं मिली, कर्म चुक्त हुआ ना, सेटल हो गया, सेटलमेंट हो गई। क्योंकि जहां पर मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था फिर भी वैसा हो रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई कर्म। आप देखो राह चलते कई बार किसी से लड़ाई हो जाती है, गाड़ी में बैठे हैं, पीछे ट्रैफिक लाइट में कोई हॉर्न बजा रहा है, हम गुस्सा करते हैं, वो लड़ाई हो गई, क्या था? कोई ना कोई पूर्व जन्म का छोटा मोटा हिसाब किताब था जो सामने आ गया, है ना? तो हिसाब किताब, देखिए हमारे रिश्ते भी कुछ नहीं है, हिसाब किताब ही है। कोई हमारे घर में लेनदार आया है, कोई देनदार आया है, कोई देने आया है, कोई लेने आया है, ऐसा ही है। और जब उसके साथ हिसाब किताब पूरा हो जाता है, वो हमारी लाइफ से चला जाता है, अच्छा भी है बुरा भी है। जिसके साथ मैंने जितना पॉजिटिव कर्मा किया था वो उतना पॉजिटिव कर्मा मेरे साथ करेगा, जिसके साथ मैंने जितना नेगेटिव कर्मा किया था उतना वो नेगेटिव करेगा। आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, किसी किसी के साथ आपका बहुत प्यार रहा है, बहुत ट्रस्ट रहा है, उसने भी आपके लिए जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा किस किस का अनुभव है? हाँ, होगा डेफिनेटली, सबके ही अनुभव हैं, वो भी हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। तो उसमें कर्म के पीछे का भाव हमारे कर्म का फल निर्धारित करता है। अब देखिए, एक व्यक्ति का खून कर दिया गया या गोली मार दी गई तो सजा है, लेकिन वही सरहद पर फौजी जब कर रहा है तो आतंकवादी को गोली मार रहा है तो वो सजा मिलेगी? वो तो अच्छा कर्म माना गया, क्योंकि वो आतंकवादी तो कईयों को मार देता। तो कर्म के पीछे भाव क्या था? डिसिप्लिन की वजह से अगर मैंने कोई एक्शन लिया और उससे कोई दुख उठा रहा है तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है, है ना। लेकिन परमात्मा सिखाते कि जितना विकारों से मुक्त होकर के एक्शंस लेंगे उतना आपका कर्म का अकाउंट जमा होता जाएगा। अच्छा, अब एक बात इसमें आती है, जब कर्मा फिलोसफी में परमात्मा का इंटरफेरेंस ही नहीं है तो फिर भगवान को याद ही क्यों करें? क्या जरूरत पड़ी है? कर्म तो हमारे इंटरफेयर वो कर ही नहीं रहे, क्यों याद करें भगवान को? तो इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक बार एक बहुत पहुंचे हुए विद्वान साधु थे और उनके सामने ऐसे ही एक उनके शिष्य आए और साधु महाराज यही प्रवचन दे रहे थे कि कर्म अच्छे करो, कर्म में भगवान का कोई रोल नहीं है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, भगवान सुख दुख नहीं देता, आपके कर्मों से ही सुख दुख मिलता है। तो यही प्रश्न उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि फिर भगवान का कोई रोल ही नहीं है तो मैं उनको याद ही क्यों करूं? तो वो जो साधु महाराज थे वो 2 मिनट के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, आप उसकी छत पर जाओ और वहां से छलांग मार दो। तो शिष्य ने कहा, महाराज इतना गुस्सा क्यों करते हो, हाँ नाराज मत हो, मैं प्रश्न नहीं पूछता। तो साधु महाराज ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आप उस बिल्डिंग से छलांग मारोगे, 5 माले की बिल्डिंग है, तो क्या होगा? हाँ, तो वो 5 माले की बिल्डिंग से उस शिष्य ने कहा, मैं छलांग मारूंगा तो मैं मेरा तो हडगुड सब टूट जाएगा, शायद मृत्यु भी हो सकती है। तो साधु महाराज ने कहा, दूसरा सिनेरियो है, अब आपको हम बहुत डल्लप होते ना, वो गद्दे होते हैं 10-12 लेयर आपके आसपास लपेट दें और अब आपको मंजिल से नीचे फेंके, अब क्या होगा? और नीचे रुई का बिस्तरा बिछा हो, बहुत सारा अच्छे से वो हो, डल्लप रगे हो, अब क्या होगा? तो कहा, मेरे को तो खरोच भी नहीं आएगी। तो दोनों केस में वो नीचे तो गिरा 5 माले से, लेकिन जो दूसरा सिनेरियो था उसमें उसके आसपास वो डल्लप लगा हुआ था जिसके कारण उस पर खरोच भी नहीं आई। इसमें क्या बात समझ में आती है? परमात्मा की याद वो डल्लप का काम करती है, वो छत्र छाया है हमारे आसपास। कर्म का फल तो मिला लेकिन उसने हमें सेफ रखा। हमारे दादी जानकी थे, 104 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी रहे वो। लास्ट टाइम में उनके शरीर में काफी पेन रहता था, दुख दर्द था, बहुत दर्द था, क्योंकि एज थी, कोई बीमारी भी थी थोड़ा, तो बहुत दर्द था। तो दादी जी से पूछा गया कि दादी जी आपको बहुत दुख हो रहा होगा ना? दादी जी ने कहा, नहीं मुझे दर्द है लेकिन दुख नहीं है। समझ में आई ये बात? दर्द है भाई, शरीर में दुख रहा है तो दर्द होगा ना, दर्द तो हो रहा है यहां पे, लेकिन दुख नहीं हो रहा, फर्क है ना। कर्म का फल हर एक भोगता है, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन कोई जरा सी सुई चुभने में भी रोने बैठ जाता है और कोई बड़ी बड़ी परिस्थितियों से भी निकल आते हैं। आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी सुनी है? उन्होंने जीवन में राज्यों का अभ्यास किया, पति को भी खोया तो वो बच्चों को भी खोया, लेकिन कहा मैं स्टेबल रही। पति की मौत के बाद ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला तो 2 बच्चों की मौत पे भी स्टेबल रही। कैसे? राजयोग के अभ्यास से, परमात्मा की छत्र छाया से। तो परमात्मा की याद क्यों जरूरी है? क्योंकि वो छत्र है जिसके अंदर हम सेफ हैं। तो कर्मा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। कब कौन सा अचानक संचित कर्म है, कितने जन्मों पुराना है, हमारे सामने आ सकता है। लेकिन उस समय मेरी स्थिति अफेक्ट ना हो, उसके लिए परमात्मा की याद आवश्यक है, पावर चाहिए। जो मेरा प्रश्न था ना कि क्रोध ना करूं या नेगेटिव ना हूं सिचुएशन में, उसके लिए आई रिक्वायर पावर। एंड वो पावर मिलेगी पावर सोर्स से, सुप्रीम से। इसीलिए याद जरूरी है। और उनकी याद से, जब वो याद योग अग्नि में परिवर्तन हो जाती है, तो वो हमारे पुराने कर्मों को भी धीरे धीरे नष्ट करने लगती है। साथ ही साथ उनकी याद से हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने का बल भी आता है। बिना बल के हम श्रेष्ठ कर्म करना चाहते तो हैं, हम कर नहीं पाते। देखो, अच्छों के साथ तो सब अच्छे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मेरे साथ अच्छा ना करे फिर भी मैं अच्छा करूं, ये बड़ी बात है। उसके लिए ताकत चाहिए। चुका ना, प्रवचन से नहीं होगा, ताकत चाहिए। ताकत आएगी उसकी याद से। अभी आप अपने प्रश्न जो पूछना चाहें एक एक करके पूछ सकते हैं। हाँ जी सिस्टर, आपने हाथ उठाया था, और किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न मैं बताती हूँ। एक प्रश्न मन में ये भी उठता है कि अब जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, और हम सबकी लाइफ में एक या दो या तीन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट होता है ना सबकी लाइफ में। वो बाकी सबसे तो बड़ा प्यार से बात करेगा, लेकिन जैसे ही मेरे सामने आएगा उसका वो प्यार गुम हो जाता है। है आपकी लाइफ में ऐसा कोई है? सर हिला रहे, स्माइल भी कर रहे हैं। तो उसके साथ सेटलमेंट कैसे करें? कार्मिक सेटलमेंट करना ना, उधार लिया किसी से तो उधार चुकतू करके खत्म करें ना, जब तक सर पे रहेगा बोझ रहेगा। तो वो कर्मा सेटलमेंट करने के लिए, अब मुझे नहीं पता कि मेरे इतने सारे बर्थ में मैंने किस किस के साथ अच्छा नहीं किया, याद नहीं है ना। तो कब कौन मेरे सामने एग्जाम बन के आ जाए? उनके सामने कल एग्जाम आ गया था, कब कौन मेरे सामने एग्जाम बन के आ जाए? अभी तो मुझे उनका ये वाला रूप दिख रहा है, लेकिन वो सोल तो पहले किसी और बर्थ में मेरे साथ अकाउंट में थी, अब उसने इस रूप में वो अकाउंट सेटल कर लिया, अकाउंट सेटल हो गया। अभी मुझे पता नहीं ना कौन कब का आ जाए, तो क्या करूं? उसके लिए परमात्मा ने एक बहुत अच्छी विधि बताई है, जो हम लोग भी करते हैं और आप लोग भी यहां से जाने के बाद अवश्य अपने जीवन में लाइए। वो विधि है, पहला माफी मांग लें, दूसरा माफ कर दें, और तीसरा शुक्रिया करें। किससे माफी मांगू? मुझे नहीं पता इस यूनिवर्स में कौन सी आत्मा के साथ मैंने कर्म किया, तो पूरी यूनिवर्स की, पूरी ब्रह्मांड की जितनी 700-800 करोड़ आत्माएं हैं, परमात्मा के सामने उनसे माफी मांग लें, और उतनी ही आत्माओं को माफ भी कर दें। माफी क्या मांगनी है? जाने अनजाने मुझसे कोई ऐसा कर्म हुआ हो जिससे आपको आहत पहुंची हो, तो मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूं। और जाने अनजाने आपके द्वारा उनको भी आत्मा देखते हुए, जिनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट था, आत्मा देखते हुए जाने अनजाने आपके द्वारा जो मुझे दुख मिला, उसके लिए मैं आपको भी माफ करती हूं और शुक्रिया भी करती हूं। आप सभी का धन्यवाद, ऐसे आप रोज मेडिटेशन में बोलें। पर कई कई हमारे पास सेंटर में भी आते हैं, कहते दीदी वो फला फला व्यक्ति को तो मर कर भी माफ नहीं करूंगी, मर जाऊंगी माफ नहीं करूंगी, कहते हैं ना। तो हम उनको उनके लिए माफ नहीं कर रहे हैं, किसके लिए माफ कर रहे हैं? अपने लिए माफ कर रहे हैं। क्योंकि जब तक माफ नहीं करोगे ना, तब तक यहां से हटने वाले नहीं हैं। थैंक यू, देखिए थैंक यू क्यों करना है। आप लोग ब्रह्मा कुमारीज में आए हो, किसी भी धर्म से जुड़ते हो, अध्यात्म से जुड़ते हो, भगवान का परिचय मिला, ऐसे नहीं आए। जीवन में कोई ना कोई दुख आया है तभी आए हो। तो कोई ना कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बना है, उसको थैंक यू करना है। थैंक यू, आप ना होते तो मैं भगवान से कैसे मिलती, मैं भगवान के घर क्यों जाती, मैं तो थी स्वर्ग में। दुख मिला, आपने दुख दिया तो मैं भगवान के घर आई ना। कल परसों में एक्सपीरियंस सुन रहे थे ना, फला फला सास ने मेरे को इतना दुख दिया, तभी फिर मैं भगवान के साथ जुड़ी और आज मेरा जीवन क्या से क्या बन गया। तो थैंक यू, आपने मेरे जीवन में ये काम ना किया होता तो आज मैं भगवान के साथ नहीं जुड़ पाती। तो आप उनको माफ भी कर पाएंगे, नहीं तो माफ करना आसान नहीं है। और हर वक्त वो यहाँ बैठे हैं, जैसे जरा सा खाली होते हैं क्या याद आता है, पास की वो बात जहां उन्होंने हमें दुख दिया था। इसके लिए एक और विधि है, अगर आपको अपने इस पास्ट की बातों से हल्का होना है ना, तो परमात्मा एक और शॉर्टकट हमें सिखाते हैं, लेटर लिखना। अभी आप लोग इस कैंपस में कब तक हैं? आज शाम तक है। तो अभी नाश्ते के बाद या पहले जब भी आपकी दिल हो, यहाँ पर बाबा का कमरा है, आप सभी डायरी पेन लेकर के बाबा के कमरे में इस कैंपस में, क्योंकि अभी आप एक एनवायरनमेंट में हो, यहाँ पर आपको शांति भी महसूस हो रही है, सुख भी महसूस हो रहा है, खुशी भी आ रही है, चिंताएं याद ही नहीं आ रही, घर की समस्याएं याद ही नहीं आ रही, बातें याद ही नहीं आ रही, दिन भी याद नहीं है, कौन सा दिन है कौन सा नहीं है, डेट कौन सी है याद नहीं है। तो ये कोई हमारा अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये इस कैंपस में जो तपस्या हुई है इतने वर्षों से, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। वो ठंडी हवा के अंदर हम हैं, एसी के अंदर अभी हम हैं, तो मन एकदम शांत है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलोगे ना, तो वो दुनिया की गर्म हवाएं वापस से थपेड़ा मारेंगी, तो ये सारी बातें लगेंगी। हाँ बड़ा अच्छा प्रवचन सुनाती है ब्रह्मा कुमारियां, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, खुद तो घर बार छोड़ दिया, हमारी जीवन में आकर देखे ना गृहस्थ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सारी बातें ऐसे रफू चक्कर हो जाएंगी, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता गृहस्थियों के लिए, तो फिर परमात्मा सुनाते ही क्यों। प्रैक्टिकल है और हजारों लाखों ने किया भी है और रिजल्ट्स भी पाए हैं, तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन विधि, सारी बातें विधि पर। अभी एनवायरमेंट में हो, सबसे पहला काम है पास्ट के भार से मुक्त होना, तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। हमें दीदियां मेडिटेशन कराते परम धाम ले जाती हैं, लेकिन हम उड़ ही नहीं पाते, हमारे तो मन में वो बातें ही चल रही होती हैं। थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करते फिर अपनी बातों में, फिर कॉन्सेंट्रेट करते फिर अपनी बातों में, तो पहले उनसे मुक्त तो हो। तो यहां जो बाबा का कमरा है, आप सभी डायरी पेन लेकर वहां बैठो। बचपन से जब से आपको जो आपकी बातें याद हैं, जो दुख दे रही हैं बार बार, जो बार एक बार तो दुख मिला ही था, उसको हमने हजारों बार रिवाइज करके अपने आप को दुख दिया है, किया है ना ऐसा। दुख एक बार मिला था, रिवाइज कर करके दुख हम खुद को दे रहे हैं। तो क्या करें, सारा कुछ परमात्मा को लेटर टू शिव बाबा, बाप दादा, लेटर लिखेंगे और उसमें अपनी हर एक बात, चाहे एक घंटा लगे चाहे दो घंटा लगे, मार्केटिंग ना कर पाओ कोई बात नहीं, शॉपिंग ना कर पाओ कोई बात नहीं, अब कहीं नहीं जा पाओ कोई बात नहीं, वो लेटर यहाँ जरूर लिख के जाना, और परमात्मा का वहां एक लेटर बॉक्स में बना हुआ है बाबा के लिए पत्र, उसमें वो डालकर भगवान शिव बाबा आपको सब कुछ समर्पण, और मैं यहां से फ्री होकर जा रही हूं, आपको लेकर जा रही हूं। और जब दिन में भी कोई बात आती है ना, तो परमात्मा को शेयर जरूर करें। क्या बताया था दूसरे दिन, वो हमारा कौन है, कौन है परमात्मा, संबंध बताया था ना, माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। जब वो मेरा सब कुछ है और मैं उसको शेयर ही नहीं करती, मैं दुनिया में फोन कर करके बताती रहती हूँ, पता है आज उसने मेरे साथ कैसा किया, पता है आज उसने मेरे साथ क्या किया, पड़ोस वाले को बताऊंगी, घर में बताऊंगी, चार लोगों को बताऊंगी, उसको बताओ ना, फिर उनको दीदी ने बताया ना कल, कहते हैं और किसी को मत बताना, फिर डरते भी हैं, हाय ये किसी को बता ना दे, वो तो बताएगा ही। जब मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, सामने वाले की क्या मैं गारंटी लूं, मैं ही बात को पचा नहीं पाई, समा नहीं पाई, सामने वाला की गारंटी नहीं है, लेकिन उसको बताएंगे ना तो वो समाएगा भी और सोल्यूशन भी देगा, है ना। तो शेयरिंग करनी है, जरूर करनी है, लेकिन उसके साथ करनी है। ये नियम बना दें, हम लोग खुद सेंटर पे रहते हैं, लेकिन हम लोग रोज रात को परमात्मा को लेटर लिख के सोते हैं। दिन भर में कई सारी बातें आती हैं, जो बाहर भी सब सेंटर पे आते हैं, क्या सुनाते हैं, अपना दुख सुनाते हैं ना, तो सारा कुछ परमात्मा को दे करके उनका भी दुख दूर करना, परमात्मा जिसकी भी जो बात है आप लेना, और अपने मन को हल्का करके फिर सोते हैं, ताकि अमृत मिले, वो बातें ना आए, क्योंकि अगर ऐसे सो जाते हैं ना तो अमृत वेला वही चलता है, ठीक है। अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो बहुत अच्छा आप सभी अनुभव करके जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी के सब प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिले होंगे, और परमात्मा की इस जर्नी को जो आपने 5 दिन में सीखा, इसे कंटिन्यू जरूर रखिएगा, क्योंकि कोई भी आर्ट हम जब सीखते हैं ना, अगर हम कंटिन्यू नहीं रखते तो वो चीज हमारी लाइफ में नहीं आती प्रैक्टिकल। आपने ड्राइविंग करना सीखा, आपने स्विमिंग करना सीखा, आपने म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा, आपने डांस करना सीखा, आपने प्रैक्टिस नहीं की, वो आर्ट आएगी आपको, आर्ट आएगी, नहीं आएगी ना। बिना प्रैक्टिस के तो रोटी बनाना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो प्रैक्टिस से ही होगा, एक दिन में नहीं होगा, इसलिए घबराना नहीं। यहां से जाने के बाद मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है, मैं तो सोच के आई थी आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, इतना गुस्सा आ रहा है। पेपर आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, लेकिन सेंटर पर जाकर के राज्यों का कोर्स भी करें दोबारा से, और सेंटर पर जाकर के मुरली क्लास भी रोज सुने, क्योंकि इतना नेगेटिव एनवायरमेंट जहां पर आप रहते हैं उसमें पॉजिटिविटी रोज नहीं लेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी के साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। जो भी कोई बात हो यहाँ पे आपको नहीं अच्छी लगी हो, परमात्मा को वो भी बता करके, माफ करके, जिसके साथ भी जो आपका अनुभव रहा हो छोड़ के जाना, लेके नहीं जाना, वहां जाके वर्णन नहीं करना, क्योंकि क्या है, सुगंध फैलानी है, खुशबू फैलानी है, तो बिल्कुल अपने आप को लाइट करके हल्के होके हम सब जाएंगे, अभी नई यात्रा की शुरुआत करेंगे। अभी हम परमात्मा को याद में बैठेंगे, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की लवलीन बहन है, वो एक कविता शेयर करना चाहती है, उसके बाद हम सभी मेडिटेशन में बैठ के फिर उठेंगे। आइए,
आप लोगों की तरफ से आप लोगों के भाव को जो नहीं कल कह पाए उसको मैं एक कविता के रूप में आप लोगों की ओर से प्रस्तुत कर रही हूं। मैं जागी हूं आज और अब, ना भीड़ की तरह चलूंगी, ना भीड़ की तरह चलूंगी ना परछाइयों में पलूंगी, अब मैं स्वयं की राह स्वयं बनाऊंगी। जो अधूरी हूं, जो अधूरी हूं भीतर से, उसे ही सबसे पहले सजाऊंगी। मैंने जाना सशक्तिकरण सिर्फ हाथों में तलवार से नहीं, वह तो है भीतर की शांति से। जो क्रोध में भी संयम रखती है और जो अपमान में भी मुस्कुराती है। राजयोग ने दिया मुझे आईना, जिसमें देखा मैं केवल तन नहीं। राजयोग ने मुझे दिया एक आईना, जिसमें देखा यह केवल तन नहीं, मैं हूं आत्मा, परम सत्ता परमात्मा की संतान। अब कोई मुझे छोटा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं स्वयं सिद्धा बनी हूं बिना शोर के। मैं हूं एक चेतना, मेरा धर्म है सेवा, मेरा स्वभाव है मधुरता और मेरा बल है आत्मज्ञान। अब मैं किसी की परछाया नहीं, मैं एक खुद दीप हूं जो अंधेरों में भी दूसरों को रास्ता दिखा सकती हूं, एक लास्ट में, मैं उठी आत्म सम्मान के साथ। अगर आप लोग साथ में बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं उठी आत्म सम्मान के साथ, मैं चली सत्य के साथ, मैं जुड़ी परमात्मा के साथ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। ओम शांति।
थैंक यू। अभी हम स्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे, 3 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे, एकाग्र हो जाएं। हाथ में कुछ भी है उसे साइड पे रख दें। खुद को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेंगे। एक एक अंग को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। ध्यान मस्तक के बीचों बीच एकाग्र कर लें। मन की स्क्रीन पे अनेक विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, देखें उन विचारों को। धीरे धीरे विचार शांत हो रहे हैं, मन पूरी तरह से शांत हो गया है। अब मैं ज्योति बिंदु आत्मा चलती हूं अपने परम पिता परमात्मा के पास। 5 तत्वों की दुनिया से पार, अंतरिक्ष से भी पार, देखें खुद को ऊपर जाते हुए, एक बिंदु सितारा ऊपर की ओर जा पहुंची अपने असली घर परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया। मेरे सामने मेरे पिता शिव बाबा, एक अति दिव्य तेजोमय सितारा। शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियां सर्वगुण मुझ आत्मा पर बरसा रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। आज मैं आत्मा परमात्मा के बिल्कुल सामने विश्व की सारी आत्माओं को देखते हुए मन ही मन सारी विश्व की आत्माओं से माफी मांगती हूँ। हे विश्व की सर्व आत्माओं, किसी भी जन्म में जाने अनजाने मेरे कोई भी कर्म के द्वारा आपको दुख पहुंचा हो, आपको परेशानी हुई हो, तो मैं आत्मा आज परमात्मा के सम्मुख सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। साथ ही साथ आपके किसी कर्म के द्वारा मुझ आत्मा को भी कोई ठेस पहुंची हो, कोई दुख हुआ हो, तो आज मैं सच्चे दिल से आपको भी माफ करती हूँ। आपके प्रति मेरे दिल में सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना है। आपका कल्याण हो, आप सदा सुखी रहें, आप भी परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। आपका दिल से शुक्रिया। सारी विश्व की आत्माओं को शुक्रिया करेंगे। प्रकृति के सारे तत्वों को शुक्रिया करेंगे। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सबको दिल से शुक्रिया करें। परमात्मा पिता, आपका भी दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हमें अपना बना लिया, हमें इतना हल्का कर दिया, हमारे सारे दुख हर लिए। आपका दिल से शुक्रिया परमात्मा। शिव बाबा का शुक्रिया करते, सबका शुक्रिया करते, मैं आत्मा बिल्कुल हल्का अनुभव कर रही हूँ और शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। वापस से चले भौतिक जगत की ओर, शरीर में भृकुटि के बीचों बीच पूरे शरीर में प्रकंपन फैल रहे हैं। एक एक अंग में परमात्मा की शक्तियां जा रही हैं। मैं संपूर्ण निरोगी हो रही हूँ और ये प्रकंपन सारे विश्व में फैल रहे हैं। सब सुखी, सब शांत, सब स्वस्थ, सबके लिए शुक्रिया और दुआएं। ओम शांति।